तीस तारीख है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीतामृतदुहे नमः। बकासुर को मार दिया, वेदव्यास जी आए और उन्होंने द्रौपदी के जन्म की कथा सुनाई। और पांचों पांडव वेदव्यास जी की आज्ञा से पांचाल देश के लिए प्रस्थान किए। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों दिव्य थे, अग्नि से पैदा हुए थे। इन सब बातों को सुनने के बाद पांचों पांडव अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति लेकर सबको यथोचित प्रणाम किए और उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। एक दिन रात्रि में यात्रा करने के बाद वे गंगा के तट पर सोमाश्रयायण तीर्थ पर पहुंचे। रात्रि के समय में सबसे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए हुए चल रहे थे। मशाल माने अग्नि, यूं एक अग्नि का बना करके उसमें आग लगा के रही हूं, प्रकाश हो जाए। उस तीर्थ के पास एकांत में गंगा के जल में गंधर्वराज अंगारपूर्ण, जो चित्ररथ के नाम से प्रसिद्ध थे, स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। चित्ररथ ने देखा जो गंधर्व था, हमें कुछ लोगों के पैरों की धमक की आवाज आ रही है और वो इस नदी की ओर ही बढ़ रहे हैं। हम यहां नदी के अंदर धनुष लिए हुए खड़े हैं और उनकी इतनी मजाल, वो हमारी तरफ बढ़े। बड़ा क्रोध आया और अपने धनुष की टंकार से आते हुए मनुष्यों को देखकर बोला, ओ दिन के अंत में जब लालिमा मई संध्या होती है, उसके बाद 80 लव के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व यक्ष और राक्षसों का होता है। दिन का समय मनुष्यों के लिए होता है। जो मनुष्य लोभवश हमारे इस गंधर्व समय में इधर आ रहे हैं, सावधान, हम और राक्षस उनको कैद कर लेंगे, क्योंकि अब रात्रि के समय में आप लोगों का जल में प्रवेश करना निषिद्ध है। खबरदार, मेरी आवाज सुनते हो तो वहीं ठहर जाओ, तुम लोगों को पता नहीं होगा मैं गंधर्वराज अंगारपूर्ण चित्ररथ नाम का गंगाजल में विहार कर रहा हूं। मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध, कुबेर का प्रिय मित्र और पूरे पूरे आत्मसम्मान का पक्षपाती हूं। मेरे नाम से ये वन भी प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी मौज से विहार करता रहूं, मेरे काम में कोई दखल नहीं दे सकता। चाहे कोई राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे रुद्रगण हो, चाहे मनुष्य हो, तुम जहां हो वहीं ठहर जाओ। भला चाहते हो तो वहीं से तुम वापस मुड़ जाओ। अर्जुन ने कहा, ओ मूर्ख, समुद्र हिमालय की तराई और गंगा नदी के स्थान रात दिन अथवा संध्या के समय सभी के लिए सुरक्षित है। सभी इनका सेवन कर सकते हैं। भूखे नंगे अमीर गरीब सभी के लिए रात दिन गंगा माई का द्वार खुला है। यहां आने के लिए कोई समय का नियम नहीं है। यदि तुम्हारी बात मान भी ले कि तुम्हारी बात ठीक है तो भी हम शक्ति संपन्न हैं, बिना समय के भी तुम्हें हम पीस सकते हैं। कमजोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देव नदी गंगा कल्याण जननी सबके लिए बेरोक टोक का स्थान है। तुमने जो इसमें रोक टोक बनाना चाहते हो ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्या तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगाजल का स्पर्श नहीं करें? कभी नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ना प्रारंभ किया। अर्जुन ने अपनी मशाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया कि सारे बाण उसके व्यर्थ हो गए। अर्जुन ने कहा, अरे गंधर्व, अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने तू धमकी देता है? तू सोचता है धमकी से काम चल जाएगा? नहीं, मैं तो अभी तुझसे माया युद्ध किया ही नहीं हूं। मैं माया युद्ध भी करना जानता हूं, दिव्यास्त्र जानता हूं। मेरे पास वो आग्नेयास्त्र है जो बृहस्पति ने भरद्वाज को दिया था, भरद्वाज ने अग्निवेश्य को दिया, अग्निवेश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को दिया और द्रोणाचार्य ने मुझे दिया। ले संभाल, अभी आग्नेयास्त्र छोड़ता हूं। छोड़ दिया। ज्यों ही वो जल गया, चित्ररथ का रथ और उसके आसपास का जल एकदम दग्ध हो गया, जल गया। वह अस्त्र के तेज से इतना चकरा गया कि रथ से कूदकर मुंह के बल लुढ़कने लगा और दौड़ करके अर्जुन ने उसके केश पकड़ लिए और उसको घसीट कर अपने भाइयों के पास लाए। गंधर्व पत्नी कुंभी नसी अपने पतिदेव की रक्षा के लिए युधिष्ठिर के शरण में आई। उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दी, अर्जुन, इस यशोहीन पराक्रमहीन एवं स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए कहा, ए गंधर्व, शोक मत करो, जाओ। तुम्हारी स्त्री ने तुम्हारी जान मांगी है और हमने तुम्हारी जान छोड़ी है। हमारे महाराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान देते हैं। गंधर्व राज ने कहा, अर्जुन, मैं हार गया, इसलिए मैं अंगार पर्ण नाम को छोड़ता हूं। ये बात मुझे बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्र का मर्मज्ञ मित्र आज अर्जुन मिला है। हे अर्जुन, मेरे पास गंधर्वों की माया सिखला देने का अनेक प्रकार का उपाय है। मैं तुम्हें गंधर्वों की माया देना चाहता हूं और तुम्हारे साथ मैत्री करके तुम्हारा बहुत बड़ा काम भी सिद्ध करना चाहता हूं। आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ा, आप सारे कल्याण के भाजन हैं, माने आप कल्याण के पात्र हैं। मैं आपको वो विद्या देता हूं जिसका नाम चाक्षुषी है। इसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को दिया, विश्वावसु ने मुझे दिया। इस विद्या का प्रभाव यह है कि इसके बल से जगत में कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी भी सूक्ष्म हो, आप अपने नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी होता है। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूं कि इसे आप बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले 100-100 घोड़े देता हूं। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही जहां जहां चले जाते हैं। वे घोड़े चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं। अर्जुन, इन घोड़ों को स्वीकार करो, आपके लिए ये घोड़े बहुत काम आने वाले हैं। अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया है। यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता। मैंने तुमको बचाया और इसके बदले में तुम दो, नहीं लेना चाहता। गंधर्व बोला, अर्जुन, जब सत्पुरुष इकट्ठे होते हैं तब इनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता है। मैं आपको प्रेम के कारण से भेंट करता हूं, आप भी मुझे आग्नेयास्त्र दे दीजिए। अर्जुन ने कहा, यह बात ठीक है, हमारी मैत्री अनंत हो, तुम्हें किसी का भय हो तो बताओ, यह अर्जुन तुम्हारी रक्षा करेगा। एक बात और बतलाओ कि तुमने हम लोगों पर यह आक्रमण किस कारण से किया। गंधर्व ने कहा, न आप लोग अग्निहोत्री हैं और न प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं, आपके साथ कोई ब्राह्मण भी नहीं है, इसी से मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी वंश सभी को मालूम है, नारद आदि से मैंने सुना है, स्वयं भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते समय मैंने सब कुछ देखा है। मैं आपके पूरे वंश से परिचित हूं। आप ब्राह्मण वेश में हैं, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप कुरुवंशी हैं, आप पांडु पुत्र हैं, आपके आचार्य द्रोण हैं और आपका दुर्भाव रखने वाला भाई दुर्योधन है। क्या मेरी जानकारी झूठी है? आप लोगों का विशुद्ध अंतःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्प को मैंने जान लिया है और जानबूझकर मैंने तुमसे ये युद्ध किया है। एक तो स्त्रियों के सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रात्रि के समय बल अधिक बढ़ गया तो क्रोध भी आ जाता है। परंतु आप लोग श्रेष्ठ धर्म और ब्रह्मचर्य के सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्य के कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर भी यदि आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहित पर आती है। मनुष्य को चाहिए कि अभिलषित काम कल्याण की प्राप्ति के लिए जितेंद्रिय पुरुषों के पास रहे। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा गुणवान एवं सत्यनिष्ठ के पास रहने पर ही हो सकती है। बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए आप यह निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मणों को नेता बनाने पर ही चिरकाल तक पृथ्वी पर आप शासन कर सकेंगे। हे तप्ती नंदन, मैंने जो तुमको ये बात कही है वो बहुत सोच विचार करके कही है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय गंधर्व के मुख से बार बार अर्जुन के लिए तप्ती नंदन का शब्द आया तो अर्जुन ने कहा कि आप हमको तप्ती नंदन क्यों बोलते हैं, हम लोगों को आप कुंती पुत्र क्यों नहीं बोलते, जब आपको हमारे वंश का ज्ञान है तो हमको कुंती नंदन बोलिए, ये तप्ती कौन थी जिसके कारण से तुम हमको तप्ती नंदन बोलते हो। गंधर्व राज ने कहा अर्जुन प्रकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है, इनकी पुत्री का नाम था तप्ती, वह भी इनके जैसी ही ज्योतिषमती थी, सूर्य की बेटी का नाम, वह सावित्री की छोटी बहन थी और अपनी तपस्या के कारण तीनों लोक में वह तप्ती नाम से विख्यात हुई। वैसी रूपवती कन्या देवता असुर अप्सरा यक्ष आदि किसी में भी नहीं थी, उन दिनों उसके समान कोई योग्य पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उसका विवाह करे। इसके लिए सूर्य सदा ही चिंतित रहते थे कि अपनी बेटी का मैं कहां विवाह करूं। उन्हीं दिनों पुरुवंश में राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। सूर्य के उदय के समय अर्घ्य देना, पुष्प चढ़ाना, उपहार चढ़ाना, पवित्रता के साथ पूजा करना, नियम उपवास, इनसे सबको संतुष्ट करना, अहंकार के बिना भक्ति भाव से पूजा करना, ये सब सूर्य भगवान के सामने करते थे। सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन की बात है कि संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों जंगलों में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया, वे पैदल ही चलने लगे। उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे उसे निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की किरण ही पृथ्वी पर आ गई हो। उन्होंने सोचा कि ऐसा सुंदर स्वरूप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी समय उसी में गड़ गए, सब कुछ भूल गए, हिलडुल तक नहीं सके। चेत होने पर उन्होंने निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मत कर इसी मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा हे सुंदरी, आप किसकी पुत्री हो, आपका क्या नाम है, इस जंगल में आप क्यों भटक रही हो, आपके शरीर सौंदर्य से आपके आभूषण चमक रहे हैं, त्रिलोकी में आपसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं हो सकता, मैं आपको हृदय से चाहता हूं। राजा की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बादल में बिजली की तरह तत्काल वो छिप गई। राजा उसको ढूंढने की चेष्टा करने लगे, अंत में असफल होने पर राजा विलाप करते करते निश्चेष्ट हो गए, पृथ्वी पर गिर गए। ताप्ती तप्ती फिर आई और मिठास भरी वाणी से कहने लगी हे महाराज, उठिए, आप जैसे सत्पुरुषों के लिए अचेत होकर पृथ्वी पर असफल होकर दुखी होकर लेटना अच्छा नहीं है। अमृत से घुली हुई ऐसी वाणी सुनकर संवरण उठ गए। उन्होंने कहा कि देवी, जब तुम चली गई तो मेरे प्राण भी तुम्हारे साथ ही रहे, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो तुम मुझे स्वीकार करो, तुम मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा राजन, मेरे पिता सूर्य हैं, कोई भी पुत्री, बहुत अच्छी बात है, कोई भी पुत्री अपने विवाह के संबंध में स्वतंत्र नहीं है, मैं बिल्कुल इस विषय में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करना चाहते हैं तो मेरे पिता से कहिए, इस परतंत्र शरीर से मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप कितने कुलीन हैं, भक्तवत्सल हैं, विश्व विश्रुत हैं, ऐसे राजा को मैं स्वीकार तो कर सकती हूँ, परंतु अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं हो सकती। आप नम्रता, नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करो और मुझे मांग लो। मैं सूर्य भगवान की कन्या और सावित्री की छोटी बहन हूं। तपती फिर आकाश में चली गई। राजा संवरण ये सब देखकर आश्चर्य में डूब गए। इसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अनुयायी, सैनिक सब आ गए। राजा को अचेत पड़ा जानकर अनेक उपायों से उनको होश में लाने की चेष्टा की। जब होश आया, केवल एक मंत्री ने एक मंत्री को अपने पास रखा और सबको विदा कर दिया। अब वे पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मनी मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। ठीक 12वें दिन वशिष्ठ ऋषि आए। उन्होंने संवरण का सारा हाल चाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही सूर्य भगवान से मिलने के लिए वशिष्ठ जी चल पड़े। सूर्य के सामने जाकर वशिष्ठ जी ने अपना परिचय दिया और स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा, हे सूर्य भगवान, मैं राजा संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। आपके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञता से परिचित हैं आप उनके। आप संवरण के उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञता से परिचित हैं। मेरे विचार से वह कन्या उनके लिए उचित है। भगवान सूर्य ने तत्काल प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी कन्या को संवरण के लिए दे दिया। वशिष्ठ के साथ तप्ती को आते देखकर संवरण अपनी प्रसन्नता का संवरण न कर सके, खूब प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सूर्य की आराधना और पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा संवरण ने तप्ती का विवाह किया और विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ वे विचरण करने लगे। 12 बरस तक वे उधर ही रहे। राजकाज पर मंत्रियों का ध्यान रहा। इधर इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। अनावृष्टि से प्रजा में हाही त्राही मचने लगी। यहां तक कि ओस भी नहीं पड़ता था। इधर अन्न की पैदावार कम हो गई। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लग रहे। तब वशिष्ठ जी ने अपने प्रभाव से वहां वर्षा कराई और तप्ती संवरण को राजधानी में ले आए। इंद्र भी पूर्ववत वर्षा करने लगे। पैदावार शुरू हो गई। हजारों वर्षों तक वे आनंद में रहे। हे अर्जुन, वही सूर्य कन्या तप्ती आपके पूर्व पुरुष राजा संवरण की पत्नी है और इसी तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ था, जिससे आपका कुरुवंश चला है, इसलिए मैंने आपको तप्ती नंदन कहा है। गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से महर्षि वशिष्ठ की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में कुछ और सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा, गंधर्वराज, हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे? कहने लगे, गंधर्व ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवताओं के लिए भी अजय काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी, इंद्रियों का संयमन कर लिया था, इसलिए इनका नाम वशिष्ठ हुआ। विशिष्ट होने से विशिष्ट, विशिष्ट से वशिष्ठ हो गया। विश्वामित्र इनके साथ बहुत द्वेष रखते थे, फिर भी उन्होंने मन में क्रोध नहीं आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों का नाश किया था और वशिष्ठ में बदला लेने की शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे यमपुरी से भी अपने पुत्रों को तपस्या के बल पर ला सकते थे, परंतु क्षमावश यमराज के नियमों का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं के पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, अनेक यज्ञ किए। आप लोग भी कोई वैसे ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मण को पुरोहित बनाइए। अर्जुन ने कहा, हे गंधर्वराज, वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे, इन दोनों में कैसे बैर हो गया? गंधर्व ने कहा, अर्जुन, यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्रुत है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। कान्यकुब्ज देश में गाधी नाम के बहुत बड़े राजा थे। वे राजर्षि कुशिक के पुत्र थे, उन्हीं से विश्वामित्र का जन्म हुआ था। एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुधन्व देश में शिकार खेलते खेलते थककर वशिष्ठ के आश्रम में आए। वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र का बड़ा स्वागत किया, अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेई और चोष्य पदार्थ उपस्थित किए। भक्ष्य होते हैं ये दांतों से खाने वाले, और दाढ़ों से खाने वाला होता है वो भोज्य होता है, लेई माने चाटने वाला होता है, चोसना माने चोष्य होता है, चूसने का। चार प्रकार के पदार्थ दिए। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझसे एक अर्बुद गव्वे या मेरा राज्य ले लीजिए, परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैंने ये दुधार गाय देवता अतिथि पितर और यक्षों के लिए रख छोड़ी है, आपके राज्य के बदले में भी ये देने योग्य नहीं है। आप इसके बदले में कुछ भी देंगे तो भी मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि कामधेनु तो कामधेनु है, इसके द्वारा मैं सब की रक्षा करता हूं। विश्वामित्र बोले, हे ब्राह्मण, याद रखो मैं क्षत्रिय हूं, आप शांत महात्मा हैं, तपस्या में लगे रहते हैं, आप कामधेनु की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप एक अर्बुद गाय के बदले में भी इसे नहीं ले रहे हैं तो मैं बलपूर्वक इसको ले जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकर के ही रहूंगा। वशिष्ठ जी बोले, आप बलवान हैं, क्षत्रिय हैं, आपके पास शस्त्र है, आप तो चाहे जो कुछ कर सकते हो, फिर अब ले जाओ भाई, और तो मैं क्या करूं। जब विश्वामित्र जी बलपूर्वक कामधेनु नंदिनी को हकवा कर ले जाने लगे, तब वह डकारती डकारती ही वशिष्ठ के पास खड़ी हो गई। वशिष्ठ ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारा क्रंदन मैं सुन रहा हूं, मेरा मन भी तुम्हारे बिना रो रहा है, पर मैं विवश हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं युद्ध तो कर नहीं सकता हूं, विश्वामित्र क्षत्रिय है और वे शस्त्र संपन्न है, मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं, ये बलपूर्वक छीन करके ले जा रहे हैं, मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूं, क्या करूं, लाचारी है। नंदिनी बोले, भगवान, ये सब मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं, मैं अनाथ की तरह डकरा रही हूं, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ जी उसका करुण क्रंदन सुनकर के भी आंख बंद करके बैठ गए, पर धैर्य से विचलित नहीं हुए। वे बोले, हे नंदिनी, क्षत्रियों का बल है तेज और ब्राह्मणों का बल है क्षमा, मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे पास है, तुम्हारी मौज हो तो जाओ। नंदिनी ने कहा, आपने तो मुझे नहीं छोड़ा है ना, यदि आपने मुझे नहीं छोड़ा है तो फिर मुझे विश्वामित्र का कोई डर नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, नंदिनी तुम्हारी जैसी गौ को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, तुम्हारी जैसी शक्ति हो तो तुम यहां रह सकती हो, तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर देख ले जा रहे हैं, मेरा इसमें कोई बस नहीं है। अब नंदिनी की अब वशिष्ठ की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर उठ गया, आंखें लाल हो गई और वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग गए। जब लोगों ने उसको फिर से लाने की चेष्टा की, वह ऊपर करके आंख निकाल करके सूर्य के समान चमकने लगी और उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा हो रही हो। उसके एक एक अंग से पल्लव, द्रविण, शक, यवन, शबर, पौंड, किरात, चीन, ऊण, सिंघली, बर्बर, खस, यूनानी और म्लेच्छ, ये सब प्रकट हुए तथा ये हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर पांच पांच सात सात करके टूट पड़े। एक सैनिक और पांच जने, वो भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो ये था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं कर सकता था, प्राणांतक प्रहार नहीं करता था। जब उनकी सेना बारह कोस भग गई, माने उसके सैनिक ने प्राण नहीं लिए, मारा पीटा भगाया बस। जब उनकी सेना बारह कोस चली गई, उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र जी का ये ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्षत्रिय ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए और क्षत्रिय भाव से बड़ी ग्लानि हो गई। विचार आया कि अरे ब्राह्मण बल कितना है, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सबसे अच्छा है। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है। उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौभाग्य लक्ष्मी, संसार के सारे सुख भोग छोड़ दिए और जंगल में जाकर वे ब्रह्म बल प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे और अंत में उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर ही लिया। गंधर्वराज चित्ररथ कहते हैं, अर्जुन राजा इक्ष्वाकु के वंश में कल्माष्पाद नाम का एक राजा हुआ। एक दिन की बात है कि वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। लौटने के समय वह एक ऐसे मार्ग से जाने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थका, मांदा, भूखा, प्यासा था। उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिखाई पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, कल्माष्पाद ने कहा, अरे रास्ते से हट जाओ, ये रास्ता मेरे लिए है, एक तरफ हो जाओ, हट जाओ। शक्ति मुनि ने कहा, महाराज सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का ये कर्तव्य होता है कि यदि सामने ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे, आप ये उल्टी बात क्यों करते हो? आप क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए आप मार्ग छोड़ेंगे या आपके लिए मैं मार्ग छोड़ूंगा? ऐसा कहने पर दोनों में आपस में विवाद बढ़ता गया। ऋषि ने कहा, मैं अपने स्थान से नहीं हटता। राजा ने कहा कि राजा लोग, क्षत्रिय लोग कभी भी एक कदम आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटते, ये उनके रग रग में भावना रहती है। राजा के हाथ में चाबुक था, उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर शाप दिया, अरे नृपाधम, तो राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया। उसने कहा कि तुमने मुझे अयोग्य श्राप दिया है, इसलिए लो मैं तुमसे अपना राक्षसपना आरंभ करता हूँ। उन्होंने उसी समय शक्ति मुनि को वहां मार दिया और वो उसको खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ के जितने पुत्र थे सबको खा गया। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों का भक्षण करने के पश्चात कल्मास का राक्षसपना तो कारण था ही, वह इसके सिवा विश्वामित्र ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी कि वह कल्मास पाद में प्रवेश कर जाए, जिस कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ और वो नीच से नीच कर्म करता चला गया। वशिष्ठ जी को जब ये बात मालूम हुई, उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की भी प्रेरणा है, तो उन्होंने अपने शोक और वेग को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को धारण करते हैं। उन्होंने प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर लौट रहे थे, उसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई षडंग वेदों का अध्ययन करता हुआ चल रहा है। वशिष्ठ जी ने पूछा, मेरे पीछे कौन चल रहा है? आवाज आई, मैं आपकी पुत्रवधु शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूं। वशिष्ठ बोले, बेटी मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेद का अध्ययन कौन कर रहा है? अदृश्यंती ने कहा, आपका पौत्र मेरे गर्भ में है, वो 12 वर्ष से वेदाध्ययन कर रहा है। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेदन नहीं हुआ। यह सोचते हुए लौट ही रहे थे कि सामने कल्मास पाद आ गया। कल्मास पाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खाने के लिए दौड़ा। उस क्रूर कर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, भगवान देखिए देखिए, ये हाथ में सूखा काष्ठ लिया भयंकर राक्षस दौड़ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, डरो मत, ये राक्षस नहीं कल्मास पाद है। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार किया और उसको रोक दिया। उसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कल्मास पाद के ऊपर डाला। वह तुरंत साप से मुक्त हो गया और 12 वर्ष के बाद आज वह साप से छूट गया, तेज बढ़ गया, होश आ गया, हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गया। महाराज, मैं सुदास का पुत्र कल्मास पाद आपका यजमान हूं, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? वशिष्ठ जी ने कहा, ये सब तो भैया समय समय की बात है, अब जाओ अपने राज्य की देखभाल करो, लेकिन इतना ध्यान रखना किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। राजा ने प्रतिज्ञा की, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूंगा, ब्राह्मणों के साथ सदा सम्मान का व्यवहार करते हुए उनका प्रेम से आदर करूंगा। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्रघाती राजा के साथ फिर अयोध्या आए और अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ जी के आश्रम पर अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जात कर्म आदि संस्कार करवाए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता मानते थे और पिताजी पिताजी कहकर पुकारा करते थे। एक दिन अदृश्यंती ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पिता नहीं दादा है, इसी प्रसंग में पराशर जी को यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। यह सुनकर चित्त में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर समझाया कि बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, ब्राह्मण के पास क्षमा एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है। इस क्षमा शस्त्र का दुरुपयोग मत करो, इसको छोड़ो मत। किसी को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, पराजित करने के लिए ये शस्त्र नहीं होता है। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता होती है। तुम राजाओं को मार दोगे तो चोर डाकू बलवान होकर सारी प्रजा को कष्ट पहुंचाएंगे। वशिष्ठ जी के समझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का विचार छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। जब उस यज्ञ से राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और ब्राह्मण वशिष्ठ ने समझाते हुए कहा, पराशर, क्षमा परम धर्म होता है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। मनुष्य तो यूं ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है, तुम ये भयंकर क्रोध क्यों करते हो? त्याग दो, ये अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता है। जैसे सर्वांग सुंदर शरीर पर कोड का दाग अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार से तुम इतने पवित्र कुल में, ब्राह्मण जन्म कुल में जन्म लेकर क्रोध करते हो, अच्छा नहीं लगता है। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने क्षमा को स्वीकार किया और अपनी यज्ञाग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। वह आग अब भी राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती रहती है। वैशंपायन जी कहते हैं, गंधर्व राज के मुख से पुरोहित की महिमा और प्रसंगवश महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने कहा, हे गंधर्व राज, तुम तो अब सब जानते ही हो, बतलाओ अब हम लोग ऐसा कौन सा वेदज्ञ पुरोहित अपनावे जो हमारे साथ रहे। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, इसी वन में उत्कोच तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो आप उन्हें पुरोहित बना लीजिए। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्वराज को विधि पूर्वक आग्नेय अस्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, हे गंधर्व रत्न, तुम जो घोड़ा देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे पास रहे, समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार और गंधर्व तथा पांडव भगवती भागीरथी के रमणीय तट से अभीष्ट स्थान की ओर चल पड़े। पांडवों ने उत्कोच तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम में जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ने कंदमूल फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार किया। इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि आज हमको मानो सारी पृथ्वी की सारी संपत्ति मिल गई हो। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी। पांडव सनात हो गए। धौम्य मुनि को ऐसा देखने लगा कि इन धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता, शक्ति और धर्मपरायणता तथा उत्साह के फलस्वरूप शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होने वाली है। मंगलाचार के अनंतर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा की। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, जब नररत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश, उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब उन्हें मार्ग में एक साथ बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहां से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे पूजनीय ब्राह्मणों, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए, वहां स्वयंवर का एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, हम भी वहीं चल रहे हैं, आइए हम लोग आपके साथ चलते हैं। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ चलने लगे। कुछ दूर आगे चलने पर फिर महर्षि वेदव्यास जी प्रकट हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल और खिले कमलों से शोभायमान सरोवरों को देखते हुए, स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ रहे थे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव और मीठी वाणी, स्वाध्यायशीलता से बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उसकी चार दीवारी स्पष्ट दिखाई दे रही है, तब उन्होंने एक कुमार के घर डेरा डाल दिया। वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे, ताकि किसी नागरिक को यह पता न चले कि ये पांडु पुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी इच्छा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह हो न हो किसी न किसी प्रकार से अर्जुन के साथ होना चाहिए, परंतु अपना ये विचार उन्होंने खुले रूप से प्रकट नहीं किया, अपने मन ही में मन में रखा। विचार किया कि अर्जुन को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि क्या पता अर्जुन लाक्षागृह में जल गए हों, क्या पता अर्जुन कहीं लुप्त हो गए हों, उन अर्जुन को कैसे पहचाने। तो अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनाया जो किसी दूसरे से झुक ही न सके, ऐसा वो प्रत्यंचा चढ़ाए, झुक नहीं सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो यूं चारों तरफ चक्कर काटता रहता था। उसके ऊपर बेदने का लक्ष्य था, वो एक जगह था। द्रुपद ने घोषणा कर दी, जो वीर रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर, अपने धनुषों से नहीं, हमारे रखे हुए धनुष पर डोरी चढ़ाकर और यहीं रखे हुए इन बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य वेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और सुंदर स्थान पर बनाया गया था। चारों ओर बड़े बड़े महल, प्रकोटे, खाइयां, फाटक बने हुए थे। चारों ओर बंधनवारें लटकी हुई थी। भीतों की ऊंचाई और रंग बिरंगी चित्रकला के कारण भी महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित बड़े बड़े राजा राजकुमार उस स्वयंवर मंडप में आकर अपने लिए अपने बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर आकर बैठ गए। युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आए और उन्हीं के साथ वे भी बैठ गए, ब्राह्मणों के साथ। यह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में सबका मन मोहित करती हुई प्रवेश करती है। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग मेरी बात ध्यान देकर सुने। ये धनुष है, ये बाण है, और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाण का प्रयोग कर सकते हैं, इसके द्वारा जो लक्ष्य वेदन कर सकते हैं। जो बलवान रूपवान एवं कुलीन पुरुष ये महान कर्म करेगा उसे मेरी प्यारी बहन द्रौपदी अर्धांगिनी बना लेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह उद्घोषणा करने के अनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, बहन देखो धृतराष्ट्र की बलवान पुत्र दुर्योधन दुर्विषह दुर्मुख दुष्प्रदर्शन विवंशति विकर्ण दुशासन युयुत्सु आदि वीरवर कर्ण के साथ लेकर तुम्हारे लिए यहां आए हुए हैं। बड़े बड़े यशस्वी कुलपति नरपति जिनमें शकुनी है वृषक है बृहद बल है ये भी तुम्हारे स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए आए हुए हैं। बहन द्रौपदी अश्वत्थामा भोज मणिमान सहदेव जयत्सेन राजा विराट सुशर्मा चेकितान पौंड्रक वासुदेव भगदत्त शल्य शिशुपाल जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहां उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को वेद्य उसके गले में तुम्हें यह वरमाला डालनी होगी। जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार का परिचय दे रहा था उसी समय रुद्र आदित्य वसु अश्विनी कुमार साध्य मरुदगण यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हो गए और इस दिव्य स्वयंवर के देखने की प्रतीक्षा करने लगे। दैत्य गरुड़ नाग देवर्षि मुख्य मुख्य गंधर्व भी वहां उपस्थित हो गए। वसुदेव नंदन बलराम जी भगवान श्री कृष्ण प्रधान प्रधान यदुवंशी और अन्य भी बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए वहां प्रवेश किए। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन शाल्म शल्य आदि राजा और महाराजाओं ने अपने बल शिक्षा गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर गिरते चले गए। वो बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, उनका मुकुट और उनके हार भी गिर गए, दम फूल गया। द्रौपदी की पाने की आशा छोड़कर वे नीचा मुख किए हुए अपमानित सा होते हुए अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। सब राजाओं की दृष्टि कर्ण पर गई। वह अपनी मंद चाल से धनुष के पास पहुंचा, धनुष के पास जाकर झट उसे उठाया और देखते ही देखते उसने डोरी भी चढ़ा दी। वह एक बाण लेकर उसका लक्ष्य भेदन करने ही वाला था कि द्रौपदी जोर से चिल्ला उठी, मैं इस सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य की ओर देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। सूर्य की ओर देखने का मतलब सूर्य को याद किया था कुंती ने, सूर्य की ओर देखा धनुष रख दिया। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया। वह धनुष उठाने के समय घुटनों के बल पर ऐसे नीचे गिरा कि कई देर तक उसको होश ही नहीं आया, पड़ गया। जरासंध की यह दशा हुई। वे जरासंध उसी समय अपमानित होकर अपनी राजधानी के लिए लौट गए। कौन यहां बैठा रहे? मध्य देश के राजा शल्य की भी यही दशा हुई जो शिशुपाल की हुई थी। सब बड़े बड़े प्रभावशील राजा लक्ष्य वेध न कर सके, सारा समाज सहम गया। लक्ष्य वेध की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य वेध करूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर, परम वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा, कहीं ये हमारी हंसी तो नहीं करा देगा? कई राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष तो नहीं करेंगे? कोई कोई कहने लगे, अरे ये उत्साही वीर है, क्या पता इसका मनोरथ भी पूर्ण हो। यारे ये देखो कैसे सिंह के समान कितनी आशा के साथ चल रहा है, इसकी गति में हाथी जैसी लुढ़कन है, हाथी जैसी लुढ़कन है, ये सब कुछ कर सकता है। देखो ना इसके मुखमंडल का तेज कितना उत्साह बता रहा है, इसके अंदर की शक्ति इसके मुख पर चमक रही है। यदि इस जैसे व्यक्ति में हिम्मत नहीं होगी तो किस में होगी? तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए कोई चीज असाध्य नहीं है। ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। अरे सुनो, अपने परशुराम ब्राह्मण ही तो थे, क्षत्रियों का संहार किया। ये अगस्त्य ब्राह्मण ही तो थे, समुद्र को पी गए। हम ब्राह्मणों में कोई शक्ति की कमी नहीं है। चलो अपने सब लोग हृदय से इसे आशीर्वाद दे, ये लक्ष्य भेद कर दे। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। जिस समय ब्राह्मणों में इस प्रकार की अनेकों बातें हो रही थी, उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, उन्होंने धनुष की परिक्रमा की, उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। और जब वे अपने मंच पर अपने स्थान पर बैठे हुए थे तो उस समय उनका ध्यान कृष्ण की ओर गया। कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण बलराम को अर्जुन का परिचय दे रहे थे। और अर्जुन की दृष्टि उस समय कृष्ण पर ऐसी अटकी कि वो बार बार कृष्ण को देख रहे थे। अब उन्होंने धनुष हाथ में लिया और कृष्ण की ओर सिर झुकाकर प्रणाम किया, धनुष उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके, रौंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने खेल ही खेल में बिना परिश्रम के उठा लिया और बात ही बात में डोरी चढ़ा दी। सब लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम गई थी। अब अर्जुन ने उन 5 बाणों में से एक बाण उठाया और उस बाण का लक्ष्य वेधन के लिए धनुष के ऊपर डोरी को खींचा। अर्जुन ने ऐसा निशाना साधा कि जो ही बाण छूटा त्यों ही वो चलने वाला यंत्र एकदम उस बाण से वेदित होकर जमीन पर गिर पड़ा और चारों ओर कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण लोग बैठे बैठे अपने दुपट्टे हिलाने लगे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उन्होंने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की कभी रक्षा करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम पूरा कर लिया है तब वे झट नकुल और सहदेव को वहां से अपने निवास स्थान पर ले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास आई और उसे गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का स्वागत किया, सत्कार किया, आशीर्वाद दिया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि के बाहर निकले। जब और राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद ने आज इस पृथ्वी पर सबसे अलौकिक काम हम लोगों के अपमान का किया है, एक ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या दे रहे हैं, तो हम किसी भी हालत में ब्राह्मण के साथ द्रौपदी को नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझा और अपनी एक श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ किया। क्या क्षत्रिय मर गए, डूब गए? हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार यदि करना था तो ऐसा ही तिरस्कार करना, हमको क्यों बुलाया? ये हम कभी सहन नहीं करेंगे, ये हमें कुछ नहीं समझता है, हमारी कोई परवाह नहीं करता है, द्रुपद को मार डालना चाहिए। इस राजद्वेषी दुरात्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। आज द्रुपद हुआ है, कल न और कोई ऐसा ही करेगा। क्या हम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपनी यह अपनी पुत्री के योग्य समझे? यदि क्षत्रियों में कोई लक्ष्य वेदन नहीं कर सका तो उसको अपनी शर्त वापस लेनी चाहिए थी या स्वयंवर्ग में दूसरी शर्त रखनी चाहिए थी, लेकिन ब्राह्मण को अपनी कन्या देने का इसको कोई अधिकार नहीं था। यदि ये कन्या हम लोगों का वरण नहीं करती है तो हम इसको आग में जला डालेंगे। ब्राह्मण कुमार ने कोई चंचलतावश लक्ष्य वेदन कर लिया तो क्या हो गया? इस ब्राह्मण ने भी तो हमारा प्रिय काम किया है। ब्राह्मण को उठ करके खड़ा नहीं होना चाहिए था, ब्राह्मण को सोचना चाहिए था कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय की कन्या कैसे स्वीकार कर सकता हूं, ये दोनों ही अपराधी हैं। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने अस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को एक साथ क्रोधित देखकर द्रुपद जी डर गए। दौड़े दौड़े ब्राह्मणों के झुंड में आकर कहने लगे, ब्राह्मणों बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं तो मार डालेंगे। ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृगचर्म और कमंडलू हिलाते हुए कहा, डरो मत, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों आप लोग एक ओर खड़े होकर तमाशा देखते रहो, आप लोगों को किसी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगे, इन लोगों के लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए और मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरों को सामने देख वे उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं है ऐसा मानकर उन पर आक्रमण करने लगे और इसी आक्रमण में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हो गया। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच खींच कर मारे कि कर्ण युद्ध भूमि में अचेत सा हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखाने लगे। कर्ण ने कहा, अरे ब्राह्मण होने पर भी आपके पास बड़ी शस्त्रों की सफाई है, मैं आपकी इस युद्ध कुशलता को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, मेरे कोई प्रसन्नता की सीमा नहीं है। अजी आपके मुख पर कोई विषाद का चिन्ह भी नहीं है और बड़ी फुर्ती से बाण चलाते हैं, आप वेदाध्ययन किए हैं या धनुर्वेद किए हैं? आप कोई परशुराम जी तो नहीं है जो वेश बदल करके यहां द्रौपदी की सुंदरता पर मुग्ध होकर आए हो? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं, नहीं आप इंद्र भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे युद्ध के अंदर उन्हीं को ही सफलता मिला करती है। मेरा निश्चय है यदि मैं क्रोध भर कर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडु नंदन अर्जुन के सिवा मेरा सामना कोई नहीं कर सकता है। अर्जुन ने कहा, कर्ण मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूं, मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूं। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जम करके खड़ा हूं, तुम अपना जोर जमाओ और अपनी शक्ति मुझ पर लगाओ। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजेय समझकर युद्ध से हट गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, क्षत्रिय इस ललकार से भी ब्राह्मण के साथ युद्ध नहीं कर सकते। जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़ गए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन आपस में ललकारते हुए मतवाले हाथियों की तरह युद्ध करने लगे। आगे खींचना, पीछे खींचना, एक दूसरे को उठा उठा करके पटकने का प्रयत्न करना, एक दूसरे के दाव को बचा लेना और घूसे और लातों की चोट मारना, ये इन दोनों का काम चल रहा था। पत्थरों के टकराने की तरह दोनों का शरीर चट 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 बोल रहा था। दो घड़ी तक लड़ भिड़ कर भीमसेन ने शल्य को उठाकर घुमाकर और जो है बड़े वेग के साथ पृथ्वी पर पटक दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे, अरे तुम तो हमारे ब्राह्मणों का गौरव बढ़ा रहे हो, एक तरफ लक्ष्य वेदन हो रहा है, एक तरफ ये हमारा ब्राह्मण एक शल्य को किस प्रकार से उठा के पटक रहा है, ये तो हमारे गौरव को बढ़ा रहा है। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए और कहा, अब इन ब्राह्मणों से युद्ध न किया जाए। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ये विजय देखकर मनी मन में बहुत प्रसन्न थे। उनको तो मालूम था ये पांडव हैं, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि देखो आप लोग, इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं वसुदेव नंदन कृष्ण आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपको इसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी को इसने धर्म से प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने स्थान पर लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुम्हार के घर की ओर चल पड़े। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर न लौटने से तरह तरह की चिंताएं कर रही थी, क्योंकि माताओं का हृदय ऐसा ही स्नेहिल होता है। वे बार बार सोचती कि कहीं मेरे पुत्र दुर्योधन आदि के कुचक्र में तो नहीं फंस गए हैं, कहीं उन्होंने इनका अनिष्ट तो नहीं कर दिया है, कहीं राक्षसों से मुठभेड़ तो नहीं हो गई है। उसी समय कुंती ने उस घर के झरोखे से देखा कि भीमसेन और अर्जुन के साथ एक स्त्री आ रही है और अर्जुन के गले में माला है। वो बड़े आनंद के साथ देख रही है और जो है वो प्रवेश कर रही है। मां ने देखा नहीं, बातें कर रहे थे, आवाज सुनाई दी, अभी देखा नहीं है। भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी के साथ कुमार के घर में प्रवेश किए। माता से कहा, मां आज हम लोग बड़ी अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं, माता कुंती उस समय घर के भीतर भोजन बना रही थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना कह दिया कि बेटा पांचों भाई मिलकर इसका उपभोग कर लो। बाहर निकलकर अब कुंती ने जब देखा तो कहा, अरे ये तो भिक्षा नहीं है, ये तो स्त्री है। पूछा कौन है कि राजकुमारी द्रौपदी है। तब बड़ा पश्चाताप हुआ, कहने लगी, हाय हाय मैंने ये क्या कह दिया। तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़ करके युधिष्ठिर के पास ले गई कुंती और बोली कि बेटा जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए, मैंने देखा नहीं, कह दिया आपस में मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी कही नहीं है। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे द्रौपदी को अधर्म न हो और मेरी बात झूठी भी न हो। युधिष्ठिर क्षण भर विचार करने के बाद माता कुंती को आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके इसका पाणी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए, सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। मैं आपसे छोटा हूँ, मुझसे पहले तो भीमसेन बड़े हैं, भीमसेन से आप बड़े हैं, क्या मैं आप दोनों से हटकर पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा द्रौपदी के साथ? मेरे लिए संभव नहीं है, पहले आप फिर भीमसेन, तदनंतर मैं, उसके बाद नकुल और उसके बाद सहदेव। इसलिए राजकुमारी का विवाह तो पहले आपके साथ होगा। साथ ये भी निवेदन किया कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जो उचित समझें वैसी आज्ञा दें, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ऐसा मीठा और ममता से भरा हुआ न्यायुक्त वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, द्रौपदी को निहारने लगे। द्रौपदी भी उन सबको देखने लगी। द्रौपदी का सौंदर्य, माधुर्य, सौशील्य बड़ा ही मुग्ध करने वाला था। पांचों भाई एक दूसरे को देखने लगे। द्रौपदी उन सब के मन में बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनका भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा, द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इसी से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अंत में विचार करने लगे कि कैसे क्या हो। भगवान कृष्ण ने इधर भगवान कृष्ण ने स्वयंवर में पांडवों को पहचान लिया था। वे बड़े भाई बलराम के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने वहां पांचों भाइयों को देखकर पहले युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बताए कि मैं वसुदेव नंदन कृष्ण हूं और ये मेरे बड़े भाई बलराम हैं। पांडवों ने बड़ा स्वागत किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि आज पहली बार पांडवों ने कृष्ण के दर्शन किए थे। भगवान कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा, भगवान हम लोग तो यहां छिपकर रह रहे थे, आपने हमको कैसे पहचान लिया? भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे युधिष्ठिर जी, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते हैं? दूध में छिपा हुआ घी रहता है, उसको नहीं प्राप्त कर लेते हैं? आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है, वह पांडवों के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? ये बड़ा सौभाग्य है, आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प सदा पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहां अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर ने भगवान युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए। जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी के साथ लेकर कुम्हार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर इनके पीछे पीछे चलने लगा कि ये ब्राह्मण कौन है। उसने सब और अपने गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर धीरे धीरे दूर से देखता देखता भीमसेन और अर्जुन तथा द्रौपदी के पीछे पीछे चलने लगा। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाई भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रखते हैं। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा भाग केवल भीमसेन को दो, आधे में छह हिस्सा करके अपने लोग खाएंगे, चार तो ये भाई एक तुम और एक मैं। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा में किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया, अपने अपने मृगचर्म बिछाए धरती पर पड़े रहे। पांडवों का अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया, सिर की ओर माता कुंती, पैर की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ हाथी तलवार गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे कि मानो ये बड़े भारी कोई सैन्याधिकारी हो। धृष्टद्युम्न पांडवों के इतना निकट आ गया था कि वह भी वहां एक अज्ञात रूप में रहता हुआ सब बातें सुन रहा था, द्रौपदी को भी देख रहा था। उसके कर्मचारी भी उस मकान के चारों तरफ थे, वहां की सब बातें देख सुनकर धृष्टद्युम्न अपने पिता के पास चला गया और वहां जो कुछ देखा अब वो पिता से आगे निवेदन करेगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्